प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मलाकी नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है रूढ़िवाद को फटकार। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु के हाथ होगा। यीशु के हाथ
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से रेडियो के निकट परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे तलाक के बारे में कि परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम तलाक दें, परंतु इसलिए बनाया कि हम एक दूसरे के साथ बने रहें, अर्थात विवाह को पवित्र ठहराया। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है। ताकि हम फिर से एक बार आपकी निकटता में आकर आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम मलाकी नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आज फिर से आप अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। विशेष करके हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज का वचन प्रत्येक के जीवन में अधिकाई से कार्य करने पाए, उनके जीवन से बोले और बातचीत करने पाए। आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा आप प्रत्येक की सहायता करें। आज के वचन पर अपनी आशीष दे, हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम मलाकी नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा की रचना की और परमेश्वर ने आदम को हवा दी, अर्थात पहला विवाह किया था, तब तलाक नहीं था। परमेश्वर ने हवा को आदम की सहायक के रूप में दिया, उसको एक सहायिका दिया। आदम को योग्य सहायक की आवश्यकता थी। यहां भाषा अति प्रभावपूर्ण है। हवा अन्य प्राणियों के समान मिट्टी से नहीं बनाई गई थी, वह आदम की पसली से निकाली गई थी, वह उसकी देह का एक अंग थी। अतः आदम हवा के बिना वास्तव में अपूर्ण था, अधूरा था। परमेश्वर ने उसे अपनी संपूर्ण सृष्टि में सबसे अधिक सुंदर बनाया और लाकर उसे आदम को दिया। वह आदम की सहायक थी। आदम में जो कमी थी उसे उसने पूरा किया, क्योंकि वह अपने आप में परिपूर्ण नहीं था। मेरे प्रियो, वह उसी के लिए बनाई गई थी और वे दोनों एक थे। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। मेरे मित्रों, मुझे एक कहानी बड़ी ही आनंददायक लगती है। एक युवा पादरी था। वह एक बुद्धिमान शिक्षक एवं प्रचारक भी था। उसकी एक भतीजी थी। वह अत्यधिक होनहार युवती थी। उसे इस पादरी ने एक महान शिक्षक के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। यह शिक्षक एक पादरी था। ये दोनों युवक युवती एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इस कहानी की प्रस्तावना आज के युग में पढ़ने के लिए वास्तव में अति मनमुग्धधारी है, जैसे फूलों की घाटी से आ रही ठंडी ठंडी हवा, जो दुर्गंध युक्त भोजन और सुअर के बाड़े जैसे आज के साहित्य पर बह रही हो। जब आदम और हवा को स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया गया, तब भी उन्होंने अनंत सुंदरता में खिलता हुआ एक फूल उन्होंने देखा। यह फूल दृढ़ निश्चय का प्रतीक था, जिसके बिना कुछ ही लोग प्रसन्न रह सकते हैं। दुर्बोध, रहस्यमय कवियों, नीतिवादियों, अन्य जातियों एवं विश्वासियों द्वारा स्वीकार्य एक महान वर, हाँ, प्रसन्नता ही की नहीं, मानवीय अस्तित्व की पहचान और आत्मा की सर्वोच्च कामना के योग्य। मेरे प्रियो, क्षण भंगुर और नाश्वर वरन दुर्बल एवं भ्रष्ट से संलग्न भी वह अपनी प्रकृति में अमर तथा उद्देश्यों में महान कभी मनोवेग, मनोभाव और प्रेरणा को देता है। हमारे स्वभाव की इस जटिलता के बिना स्त्री की व्याख्या करना, जो उसके विशिष्ट आकर्षण को रचते हैं, ऐसा है जैसा नायक बिना किसी नाटक को करना, धर्म बिना बलिदान चढ़ाना। मेरा विषय अपनी कठिनाइयों से रहित नहीं है। मनोवेग और मनोभाव यदि विकृत हों तो अपमानजनक होते हैं, परंतु शुद्ध हों तो प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। तथापि मैं अवगुण नहीं सद्गुण, दुर्बलता नहीं सामर्थ्य, अस्थिर नहीं स्थिर, नाश्वर नहीं अनाश्वर का चित्रण करता हूँ, जो एक अभिलाषी आत्मा के लिए प्रतिष्ठा का कारण है। अब ये दोनों युवा जो एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, गुप्त रूप से अपने एक मित्र पादरी के हाथों विवाह कर लेते हैं, परंतु वहां के सेवक के विश्वासघात के कारण उनका भेद खुल जाता है और प्रबंधन उस युवती को बाहर भेज देते हैं। अब क्योंकि यह युवा पादरी एक महान एवं निर्भीक विचारक था, 12वीं शताब्दी में प्रचार करना आरंभ करता है कि मनुष्य का अधिकार परमेश्वर का वचन है, कलीसियाई तंत्र नहीं है। इस प्रकार उसका मन कड़वा हो गया क्योंकि उसे वंचित किया गया था। वह अपनी पत्नी से 20 वर्ष बड़ा था। मरते समय उसने प्रबंधन से निवेदन किया कि उसकी पत्नी को उससे मिलने दिया जाए, परंतु प्रबंधन ने अति निर्दयता से इनकार कर दिया। अतः उसने उसके नाम एक पत्र लिखा जो मेरे लिए अत्यधिक हृदय विदारक पत्र था। अंत में वह एक प्रार्थना लिखता है, हे प्रभु, जब तुझे पसंद आया और जैसा तुझे पसंद आया तूने हमें जोड़ा और अलग भी कर दिया। अब तूने जो ऐसी दया से आरंभ किया है उसे अपनी दया में पूरी भी कर और इस संसार में हमें अलग करने के बाद स्वर्ग में सदा के लिए जोड़ दे। मैं विश्वास करता हूं कि स्वर्ग में वे एक होंगे। अब हम एक महान पद को पढ़ेंगे, मलाकी परिवार और तलाक से संबंधित सामाजिक पाप की चर्चा का अंत करता है और ये पाप राष्ट्र के जीवन को भीतर ही भीतर से नष्ट कर रहे थे। ये पाप किसी भी देश को नष्ट कर देते हैं। मलाकी नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है तो भी पूछते हो हमने किस बात में उसे उकता दिया। इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह है कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। यहां पर लिखा है, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है। इसे पढ़कर मुझे हंसी आती है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी लंबी लंबी दुआओं से, प्रार्थना से उकता गया हूं और तुम्हारी गवाहियां सुनकर ऊब गया हूं। आपको स्मरण होगा कि पहले अध्याय में वे अपनी दिखावे की आराधनाओं के लिए कहते हैं कि यह कैसा उकता देने वाला काम है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें तो आधी भी जानकारी नहीं है, तुम अपने पाखंड से मुझे रोने के लिए विवश करते हो। तब आगे लिखा है, तो भी पूछते हो हमने किस बात में उसे उकता दिया। यहां हम उनकी स्वांगपूर्ण निर्दोषिता देखते हैं। उन्हें बुरा लगा कि परमेश्वर ने उनसे ऐसा कहा। वे अपने पापों से अनभिज्ञ थे, अतः वे पूछते हैं हमने किस बात में उसे उकता दिया है। मेरे मित्रों, ध्यान दें, यह उनकी स्वांगपूर्ण आराधना के दोष पर परमेश्वर से 5वीं बार पूछा गया है। निंदा और दुष्टता के साथ वे परमेश्वर से असहमत होकर पूछते हैं हमने किस बात में उसे उकता दिया है। परमेश्वर उनसे सीधा एवं स्पष्ट कहता है इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। वे परमेश्वर के गुण को अपवित्र ठहरा रहे थे। यह धारणा मानव जाति के इतिहास में बार बार देखने को मिलती है, प्रायः सुनने को मिलता है। देखो पापी कैसे फूल फल रहे हैं, उन पर हमारी जैसे परेशानियां या कष्ट नहीं है। मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं तो फिर परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होने देता है। मेरे प्रियो, भजनकार की भी यही शिकायत है। वह दुष्टों को जो परमेश्वर की सेवा नहीं करते थे फूलते फलते देखता था। वे सबसे अधिक समृद्ध थे, देखिए भजन संहिता 73 उसके 2 और 3 में लिखा है, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। उसने देखा कि दुष्ट अधिकाधिक धनवान बन रहे थे और गरीब अधिक से अधिक कंगाल होते जा रहे थे। परमेश्वर के अभागे संत समृद्धि से वंचित थे। मलाकी के युग में भी यही शिकायत की जाती थी और यह मानसिकता नई नैतिकता को जन्म देती है। जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। वे अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहने लगे थे। बुराई करना लाभकारी है। मेरे प्रियो, आज की मानसिकता भी ऐसी ही है। अपराध को लाभकारी माना जाता है। मनुष्य जितना अधिक पाप करके बच जाए, करने से नहीं चूकता है। अकेला मनुष्य ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी। गरीब जब पांव तले रौंदा जाता है तब परमेश्वर देखता क्यों नहीं है, कुछ क्यों नहीं करता है, यही हमारी सोच है। भजनकार को तो अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया क्योंकि वह परमेश्वर के पास गया था। भजन संहिता 73 के 17 पद में, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। वह निकट वर्तमान को देख रहा था, परंतु दूर भविष्य कैसा होगा, उनका अनंत जीवन कैसा होगा। आज हम जहां हैं वहां से उनका युग प्राचीन काल का इतिहास है, परंतु उस समय भी उन्होंने अपने अनंत जीवन का निर्णय ले लिया था। हमारी पीढ़ी का समय तो बड़ी तेजी से बीत रहा है। आज अभक्तों के विषय क्या कहा जाए, वे नई नैतिकता का निर्माण कर सकते हैं, वे अधिक से अधिक धन कमा सकते हैं, परंतु एक दिन उन्हें न्यायकर्ता के समक्ष खड़ा होना होगा, उन्हें उसे लेखा देना होगा। अतः हमें आज के युग में परमेश्वर के विलंब का न्याय करने से अति सावधान रहना है। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन के प्रति ध्यान देना है कि हम किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार हम दो बाइबल विद्यार्थी मार्ग में जा रहे थे और हमें एक व्यक्ति मिला। हमने उसे बैठा लिया। वह शराब से महक रहा था। उसने कहा कि वह जानता है कि उसे शराब नहीं पीना चाहिए। हमने उसे प्रभुष्य के बारे में बताना आरंभ कर दिया। मेरे मित्र ने जो कहा वह सुनकर मैं शब्द रह गया, परंतु आज मैं उससे सहमत हूं। उसने कहा, हम तुम्हें पीने के कारण अपराधी नहीं ठहराते हैं, तुम नरक के मार्ग पर हो, अतः तुम अपने बचे हुए जीवन में जितने शराब पी सकते हो यही पी लो, क्योंकि अनंत जीवन में तुम्हें शराब नहीं मिलेगी। अतः जितना जीना चाहो जी लो, क्योंकि तुम अनंत काल की ओर अग्रसर हो। क्या तुमने कभी इस पर ध्यान दिया है? मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन से परिचित प्रत्येक उद्धार रहित मनुष्य जानता है कि वह पापी है और न्याय करने वाला परमेश्वर भी है, परंतु यह अपेक्षा न करें कि वह तुरंत दंड देगा। बचपन में हम तरबूज चुराने के लिए जाते थे और मैं जब जब खेत में घुसता था तो यही सोचता था कि आकाश से आग गिरकर मुझे भस्म कर देगी, परंतु मैं फिर भी तरबूज चुराने के लिए जाता था। यह मन की इच्छा है, चाहे मनुष्य बालक हो या बड़ा क्यों ना हो। परंतु परमेश्वर यद्यपि तात्कालिक कार्यवाही कर सकता है, परंतु वह करता नहीं है। परमेश्वर सदैव तात्कालिक दंड नहीं देता है, जिसे मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर कभी दंड नहीं देगा। सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। मनुष्य एक बार बच जाता है तो सोचता है कि वह सदा ही बच जाएगा। मलाकी के युग में इसराइली पूछते थे, न्यायी परमेश्वर कहाँ है? अगले अध्याय में परमेश्वर इसका उत्तर देगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे। अध्याय 3 का विषय है दो दूतों की घोषणा, धर्म के पाप की भर्त्सना। मेरे प्रियो, पिछले अध्याय में उन्होंने दो प्रश्न पूछा, उसका उत्तर परमेश्वर इस अध्याय में देता है। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हां, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहां दो दूतों का उल्लेख किया गया है। पहला दूत जो पहले आकर मार्ग को सुधारेगा वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, और दूसरा वाचा का वह दूत प्रभु यीशु मसीह है। मेरे मित्रों, इस पहले दूत की भविष्यवाणी चारों सुसमाचार वृत्तांतों में व्यक्त की गई है। वे इसकी पूर्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में दर्शाते हैं। यहां अनुमान लगाने वाली बात नहीं है, परंतु वाचा के दूत की भविष्यवाणी का संदर्भ सुसमाचार में कहीं नहीं दिया गया है। इसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह ही है। परंतु इस भविष्यवाणी का संबंध प्रभु यीशु के पहले आगमन से नहीं है। उसका यह आगमन अनुग्रह में आना और मुक्ति दिलाना नहीं, वरन एक न्यायी के रूप में अपना राज्य स्थापित करके पृथ्वी पर विद्रोह का दमन करना है। जी हाँ, जब वह पहली बार आया था तब उसने स्वयं कहा था, लुका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 14 पद में, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? पहली बार वह न्यायी नहीं, उद्धारकर्ता होकर के आया था। वह शासन नहीं, अनुग्रह लेकर के आया था। वह शासक नहीं, उद्धारक होकर के आया था। मेरे प्रियो, जब वह दूसरी बार आएगा तब वह हमारा न्याय करेगा। क्या आप उसके लिए तैयार होंगे? आज आपके पास अवसर है कि आप अपने मनों को प्रभु की ओर लौटा लाएं, अपने पापों से मनों को फिराएं। आप यह न सोचें कि परमेश्वर आपके गलतियों पर कुछ दंड नहीं दे रहा है तो आप बच जाएंगे। उसके लिए समय है, आप पर अनुग्रह किया जा रहा है। आप अपने पापों से मनों को फिराकर प्रभु की ओर लौट आएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433। 3970965143339 7। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
देखा है जिंदगी में यीशु जी प्रेम तेरा, जीवन प्रकाश देता है यीशु जी प्रेम तेरा। देखा है जिंदगी में यीशु जी प्रेम तेरा, नजर में है तेरी नजर में है। मिलता है हर किसी को अद्भुत ये प्रेम तेरा, जीवन प्रकाश देता है यीशु जी प्रेम तेरा। देखा है जिंदगी में यीशु जी प्रेम तेरा, जीवन नया मिला है तो बदली है राह हमारी, जीवन नया मिला है तो बदली है राह हमारी, बदली है राह हमारी, बदली है गुनाह हमारे यीशु जी प्रेम तेरा, जीवन प्रकाश देता है यीशु जी प्रेम तेरा। देखा है जिंदगी में यीशु जी प्रेम तेरा, के नरा से अपने अब जीवन में हम कभी, बट के नरा से अपने अब जीवन में हम कभी, जीवन में हम कभी, जीवन में कभी। देता सहारा हमको यीशु जी प्रेम तेरा, जीवन प्रकाश देता है यीशु जी प्रेम तेरा।